नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमें जीवन के उस पहलू से अवगत कराया जाता है जो हमारे लिए बिना संदेह श्रेष्ठ है। यही तो एम है इस कार्यक्रम का, और इस एम को पूरा करने के लिए हम गुरुजी से उन बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए निस्संदेह मंगलदायी है। पिछले एपिसोड में गुरुजी ने हमें बताया कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हमारे भीतर ही झांकना होगा। तो आइए इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी के साथ। गुरुजी, पिछली बार आपने अपने आप को जानने की बात हमें संतों के उदाहरण देकर समझाई। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब अपने भीतर झांकते हैं तो हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है।
सच्चाई की जानकारी प्राप्त होती है। भीतर इसलिए झांक रहे हैं कि कोई सुनी सुनाई बात, कोई पढ़ी पढ़ाई बात, कोई कल्पना की बात वो मन में नहीं आए। अनुभव क्या हो रहा है, अनुभव क्या हो रहा है, तो भले मोटे मोटे अनुभव जो भी हो उनसे काम शुरू करते हैं, उससे गहराई आगे जाते जाते हैं। आगे कहां तक जाना है ये ऊपर ऊपर के चित्त की बात को समझ लेना फिर भी आसान है। गहराइयों तक अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर के सच्चाई को देखता है वो सही माने में योगी होता है। अन्यथा तो ऊपर ऊपर के शारीरिक कसरत करके कुछ समझे योगी हो गया, योगी नहीं होता। तो ज्ञान गुफा जाने नहीं जोगी, आगम अर्थ कहां बूझे। उस समझेगा क्या, पुस्तकों के जो ज्ञान है क्या समझेगा, मानो भगवान बुद्ध की वाणी है क्या समझेगा उसे। अनुभव पर उतरेगी सच्चाई, अनुभव पर उतरेगी तो ज्ञान गुफा तक जाना है। माने गुहाशय कहा भगवान बुद्ध ने, गुफा है चित्त, उस गुफा में अंतर मन का चित्त इन गहराइयों में वहां छुपा हुआ अंधेरे में उसको देखते 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 तब मालूम होगा। अरे पांच अगने में पड़ी पड़ी दाझे, शीतल ठोर नहीं सूझे। अंदर जाएगा तो मालूम हो कैसी अग्नि जल रही है। पांचों इंद्रियों को लेकर के जो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उससे कैसी अग्नि जल रही है, अंगारे जल रहे हैं। और साधना करते 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 वो आग घुसती है वो अवस्था प्राप्त होती है शीतल अवस्था। उसे भगवान बुद्ध ने कहा शीतली भूत, शीती भूत होना चाहिए। हो गया शीतल, हो गया ऐसा अनुभव हो तब तो ज्ञान सही ज्ञान हुआ, अन्यथा तो पुस्तकीय ज्ञान होकर रह गया। ये जरूरी है बेटी, अनुभव करके ही सच्चाई को जाने तो ही कल्याण होता है।
जी गुरुजी, गुरुजी ऐसा अनुभव तो अनेक संतों ने किया होगा, तो क्या और परंपरा के जो संत हैं वो भी ये भाव व्यक्त करते हैं।
हाँ बेटी, जिसने अनुभव किया वो तो यही भाव प्रकट करेगा। अनुभव होगा तो जो सच्चाई भीतर की वो नहीं देखती इस बात को कि अनुभव करने वाला अपने को हिंदू कहता है कि मुस्लिम कहता है कि क्रिश्चियन कहता है, लेन देन नहीं। वो अपने आप को ये वर्ण का है कि ये जाति का, कोई नहीं। कोई भी जो अनुभव करेगा वही सच्चाई सबको मालूम होगी। एक संत हुआ रज्जब नाम का, तो रज्जब मन में मौज उठे, रज्जब मन में मौन उठे, मन की काया होए। क्या समझेगा कोई, अनुभव के बिना क्या भूल गया। मन में मौज उठे तो माने आनंद उठे, अरे नहीं तरंगे उठे, मौज तरंग को कहते हैं। मन में तरंगे उठती है, मन तरंग ही तरंग है, उस तरंगों को देखता है तरंग उठती है। और मन की काया होए, तो जब तक विपश्यना न करे तो समझेगा क्या, क्या मन की काया हुई। ये जो मन है कैसे परिवर्तित हो जाता है, भगवान ने इसे कहा चित्तज कलाप, चित्त से उत्पन्न होने वाला ये एटॉम। तो देखेगा भीतर कैसे चित्त काया में परिवर्तित हो रहा है। मन की काया होए, यों शरीर पल पल धरे बुझे बिरला कोई। पल पल नया शरीर हो रहा है, नष्ट होता है, नया बनता है, नष्ट होता है, प्रतिपल नया होता है, नष्ट होता है, नया होता है, नष्ट होता है। अरे इसे कौन समझे? खाली बुद्धि समझेगा, अनुभव करेगा भीतर। ये कब होगा? जबकि सच्चाई का आलंबन लेगा। सत्य सो एक अवलंब कर आपको, अपने आप का अवलंबन बना और सत्य के साथ बना, तो फिर शोध शरीर कनक की नाई। जैसे हम सोने को तपा करके शुद्ध करते हैं, ऐसे शरीर के भीतर, काया के भीतर, चित्त के भीतर जो विकार हैं, उनको तपा तपा के शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। ये सही माने में अंतर तप है। ये अंतर तप करते हुए सारा मैल निकालना होता है। वो क्रिया है, करने पर होगा। केवल पढ़ने पर, सुनने पर, वाद विवाद करने पर मिलने वाला नहीं है कुछ भी। एक काम करने से होता है बेटी, किसी की कृपा से नहीं होता, अपने आप पर कृपा करनी होती है।
जी गुरु जी, शुक्रिया। आपकी ये बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि ये मामूली इंसान के लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। आपसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरु जी, जैसा कि आप समझाते हैं कि कभी कभी एक मामूली इंसान का ध्यान अपने गुण दोषों की ओर जाता ही है।
ये ऊपरी ऊपरी गुण दोषों को जान लेना अच्छा है, कम से कम इतना तो होश रहे। लेकिन गहराई से, जहां हमारे दोष अंतर्मन की गहराइयों में इकट्ठे हैं और उन्होंने एक स्वभाव बना लिया अपना, उस स्वभाव को पलटना जरूरी। तो उसी को ज्ञान गुफा कहा। उस गुहाशय में जाकर के सच्चाई को जानते हुए अपने आप को पलटना है, मन की जड़ों में जाकर के उसे सुधारना है। वो अपने को देखने से अपना परिचय प्राप्त करना होता है। सारी साधना इस काम के लिए, अपना परिचय। अपने परिचय लागे तारी, तार बन जाएगा काम करते करते, ऐसा तार बन जाएगा रितंबरा प्रज्ञा जागेगी। तो प्रज्ञा में स्थित हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते हर अवस्था में तार चल रहा है। भीतर के तार को जान दे, अपने परिचय को जान दे, अपना परिचय जान दे, अपने जान, अपन पे आप समाया, बस अपने में ही समा गया, तो भीतर ही समा गया। अरे तब ऐसी अवस्था आती है, कहे कबीर, जब आपा जान्या, मिट गया आवन जाना। तो अपने आप को जान लिया। ये गहराई तक जानना है, केवल ऊपर ऊपर से जान लेने से बात नहीं बनती। गहराई से अंतर मन की गहराइयों तक अपने आप को जान लिया, अंतर मन तक के विकार निकल गए, तो मिट गया आवन जाना। फिर आने जाने का चक्कर मिट गया, अपने आप मिट जाता है, कोई संस्कार नहीं बचा, सारे कर्म संस्कार निकाल के फेंक दिए। तो कहा आवन जावन मिट गई, जब मन मन ही समाए। भीतर जाते जाते मन मन में समा गया, अब कुछ है ही नहीं, अलग अलग कुछ है नहीं, देखने के लिए कुछ नहीं रह गया। यूं जब अवस्था आती है तो आना जाना अपने आप खत्म हो गया। इसके लिए काम करना पड़ता है बेटी। ये प्रवचन सुन करके या प्रवचन दे करके कोई आदमी समझे कि अब हमको तो रास्ता मिल गया, हम मुक्त हो जाएंगे, होता नहीं। डुबकी लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जिन ढूंढा तिन पाईया, गहरे पानी बैठ। खूब गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, तब मोती मिलता है। अरे भाई, डरते रहोगे तो कैसे होगा? मैं बपुरा डरता रहा, रहा किनारे बैठ। किनारे बैठ के डरता रहा, मैं कैसे डुबकी लगाऊं, मैं कैसे डुबकी लगाऊं? अरे तुम गहरे पानी में नहीं लगा सकते, तो किनारे के पानी पर तो लगाना सीखो, जरा शुरू तो करो। आगे बढ़ते 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 अपने आप गहरी डुबकी लगने लगेगी। डुबकी लगाने का मुख्य कारण ये कि हमको अपना मन सुधारना है। मन को सुधारे बिना हम समझेंगे हम मुक्त हो जाएंगे, किसी की कृपा से मुक्त हो जाएंगे, तो धोखा ही धोखा है। मन को सुधारना है, क्योंकि मन एव मनुष्याना कारणं बंध मुक्ते। हमारे बंधन का कारण भी मन है और हमारे बंधन की मुक्ति का रास्ता भी मन ही है। मन सुधरने से ही मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो मन ना ही तजे विकारा, जो मन ना ही तजे विकारा, तो कैसे तरिए भव पारा। भव के पार कैसे तरेंगे? मन में विकार लिए बैठे हैं तो डूबेंगे ना उस विकारों के साथ, पार कैसे जाएंगे? तो विकार निकलना है, मन को निर्मल बनाना है। तो ये क्या करना? भीतर की सच्चाई का दर्शन करना है। जो दर्शन की ना चाहिए, भीतर की सच्चाई का दर्शन करना है तो दर्पण मांजत रहिए, ये मन का दर्पण है, इसका मैल उतारते उतारते सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और वो सच्चाई सामने आते आते मैल उतरेगा सच्चाई आएगी, सच्चाई आएगा मैल उतरेगा, मुक्त हो जाएगा। करने की विद्या है बेटी, करना होता है, बातों से नहीं, बातों से हमें प्रेरणा मिल सकती है, मार्गदर्शक मिल जाता है, काम करना पड़ेगा।
जी गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें अपने आप को जानने की क्रिया कहीं ना कहीं शुरू करनी ही होगी।
बिल्कुल
गुरुजी, आपसे इसी विषय में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम अपने कर्मों के खुद ही जिम्मेदार होते हैं।
बिल्कुल।
हम जिस स्थिति में अभी हैं, वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से ही है।
बिल्कुल सही बात है बेटी, किसी दूसरे को क्यों दोष दें, किसी अदृश्य शक्ति को क्या पड़ी है कि हमको दुखी बनाए, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ये होश जागता है जब अपने आप को देखता है तो पता लगता है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, मैं अपना मालिक हूं, अत्ता ही अत्तनो गति, मैं अपनी गति बनाता हूं, मेरे हाथ पे अपनी गति बनानी, होश नहीं है तो दुर्गति बनाऊंगा, होश है तो सदगति बनाऊंगा, और होश जाग गया तो सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था तक पहुंच जाऊंगा, मैं अपना मालिक हूं। अहंकार के लिए नहीं, जिम्मेदारी की बात है। अपनी नादानी से मैं अपने मन को मैला करता हूं और दुखी होता हूं, अपनी समझदारी से अपने इस मैल को दूर करता हूं और मैं सुखी हो जाता हूं। ये सच्चाई अनुभव से जानेगा। अपने ही आप जले अपकारी, जब वो दूसरे की हानि करता है, अपकार करता है, उपकार करना भला करना, अपकार करना बुरा करना, बुरा करता है किसी का तो कब करता है, अपने भीतर विकार जगा के करता है, तो वो अपने आप जलता है भीतर, कभी देखता नहीं अपने भीतर कि मैं जल रहा हूं, क्रोध जगाता हूं किसी दूसरे पर लेकिन जलने में लगा, ये अपने आप देखे अपने भीतर तब ना समझ में आएगा, तो अपने ही आप जले अपकारी, काम क्रोध दो भय विकारा, आप ही आप जले संसारा, ये दो ऐसे विकार हैं जिनमें जल रहे हैं, सारा संसार जल रहा है पर जानता नहीं कि मैं जल रहा हूं, अपने भीतर देखे बिना कैसे मालूम हो कि भीतर अंगारे फूट रहे हैं, इन अंगारों को इनकी आग बुझानी है तो भीतर देखे बिना कैसे होगा, आप ही मारे आपको, कौन अपने को कष्ट देता है, खुद दे रहे हैं, आप ही मारे आपको, आपको खाए, आप ही अपना काल है, दादू कहे समझा है, कौन दुश्मन है हमारा, हम अपने दुश्मन हैं, होश नहीं है तो अपनी दुश्मनी अपनी हानि करते हैं, इसीलिए भगवान ने समझाया, अगर तुम्हें दुखों के बाहर निकलना है, अगर तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर के बाहर निकलना है तो अत्तदीप भवत है, अत्तदीप विहरत है, अपने आप को द्वीप बनाओ, समुद्र में तूफाने उठ रही हैं, तुम्हारी नाव कब डूब जाएगी पता नहीं, तुम्हें कोई द्वीप चाहिए जिसमें तुमको शरण मिल जाए, तो अत्तदीप विहरत है, अपने आप को द्वीप बनाओ, अत्त शरणं, अपनी शरण लो, किसी और की शरण नहीं, न अन्य शरणं, कोई और शरण देने वाला नहीं है, अपने आप की शरण लो, मुक्त हो जाओगे।
गुरुजी, अब हम आपसे उस अगले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे जिससे हमें ये कुशलता प्राप्त होगी।
हाँ बेटी, अगला मंगल बहुश्रुत होना, सुनकर के बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना, यही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान तो प्राप्त होना चाहिए ना, उसे बहुश्रुत कहते थे।
जी गुरुजी, गुरुजी इस टर्म को आप विस्तार से समझाएंगे।
श्रुत माने सुनना, जो ज्ञान सुन करके प्राप्त हो वो बहुश्रुत, देख करके प्राप्त हो उसको भी कहेंगे बहुश्रुत। पुराने जमाने में लिखने की पढ़ने की उतनी सुविधा नहीं थी, उतनी सरलता भी नहीं थी, कठिनाई थी, तो ज्ञान एक गुरु अपनी वाणी में कहता है तो उसे सुनते हैं और सुन करके फिर याद करते हैं, इसी प्रकार की परंपरा चलती थी, तो इसीलिए अपने आप पुराने ग्रंथों को श्रुति कहा और उसके बाद लोगों ने याद किया तो एक शब्द चला स्मृति। श्रुति और स्मृति, सुनो और याद करो, सुनो और याद करो। आंख दो है हमारे पास, कान दो हमारे पास, तो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो देखने का, सुनने का और फिर उसे याद करने का। तो ये बहुश्रुत हुआ। वैसे ये ज्ञान आरंभ होता है माता पिता से, तो पहले माता पिता से सीखे, फिर किसी विद्यालय में जाए तो वहां सीखे, ये बहुत आवश्यक है। गृहस्थ के जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए ये विद्या प्राप्त करनी आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, नहीं तो जैसे हंसों की टोली में एक बगुला बैठ गया तो कहां शोभा, उसको शोभा नहीं मालूम होगा, अशोभ नहीं होगा। ज्ञान जितना बढ़े उतना ही जीवन सफल होगा, उतने ही सुख संपदा प्राप्त होगी। तो ये सारे ज्ञान, इसके अतिरिक्त इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये सारे भी पढ़ने चाहिए। सारा श्रुत में आता है, श्रुत ज्ञान है। बहु श्रुत हो, बहु ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करे सुनकर पढ़कर।
गुरुजी ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। अब वक्त हो रहा है दर्शकों के प्रश्नों का, तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं तुरंत। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। दर्शकों आपसे हमें जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनके उत्तर हम अभी गुरुजी से पाएंगे। गुरुजी पहला प्रश्न पूछ रहे हैं जगन्नाथ पुष्टि जी हांगकांग से। वो पूछते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये बताइए कि सास में दोष होता है या बहू में?
बेटी जहाँ झगड़ा चलता है तो समझ लेना चाहिए दोनों में दोष है, नहीं झगड़ा कैसे होगा। हमेशा सास कहेगी बहू में दोष है, बहू कहेगी सास में दोष है, दोनों अपना अपना दोष देखना शुरू कर दें भीतर, दोष के बाहर निकल जाएंगे, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। झगड़ा इसीलिए होता है कि दोष है और हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करते, किसी अन्य के दोष को बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं, झगड़ा होता है।
जी गुरु जी, अगर ये बात सास और बहू दोनों समझ ले तो ये किस्सा ही ना रहे,
ऐसा ही होना चाहिए।
दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं राज शुक्ला जी उत्तर प्रदेश से। वो पूछते हैं कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी?
सबसे पहले रामायण किसने लिखी, इस जंजाल में क्यों पड़े, किसी ने भी लिखी हो। सच्चाई ये है कि समय बीतते बीतते अनेक कवियों ने, अनेक लेखकों ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा। उस जंजाल में हम नहीं जाएं, जहां जहां जो बात धर्म के बहुत अच्छे लगे उसे स्वीकार करें, जो नहीं अच्छे लगे उसकी निंदा नहीं, जो स्वीकार करने योग्य उसे स्वीकार करें और वैसा जीवन अपने जीवन में, वैसी बात अपने जीवन में उतारने का काम करें, ये काम की बात है।
जी गुरु जी। गुरु जी अगला प्रश्न पूछ रही है राधा बैनर्जी कलकत्ता से। आज जितने भी सत्संग वाले हैं, माने जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, वे सब कृष्ण को ही मानते हैं, राम को क्यों नहीं?
ये उनसे पूछो। बेटी राम को माने कि कृष्ण को माने, केवल मानने से होगा क्या? हम उनके जीवन में कोई आदर्श है, अच्छी बातें हैं, उनको हम धारण करना शुरू कर दें तो काम की बात हुई। राम के जीवन के आदर्श अपने जीवन में धारण करें, कृष्ण के अपने धारण करें, ईसा मसीह के धारण करें, बुद्ध के धारण करें, महावीर के धारण करें, तो कल्याण की बात हुई ना, धारण करना आवश्यक है।
शुक्रिया गुरुजी, उम्मीद करती हूँ कि राधा जी आपकी बात जरूर सुन रही होंगी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही है गौरी जी पुणे से। आप जातिवाद की इतनी बड़ी निंदा करते हैं, लेकिन आपने समाज में महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा, ऐसे धर्म शास्त्रों के बारे में आपका क्या कहना है?
बेटी क्या करूं, देश की आधी आबादी नारी की, उनको घर की दासी बना के छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से बातें बहुत ऊंची ऊंची, एक तरफ कहेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, और दूसरी ओर बेचारी को पांव का जूती बना के रखते हैं। तो ये कथने और करने में जो इतना बड़ा अंतर आया उसको दूर करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी विश्व के समझदार लोगों के बीच में कोई बात होती है तो हमारा सिर नीचा होता है कि तुम एक ओर तो ऐसी बातें करते हो और दूसरी ओर तुम्हारा ये काम इस तरह का होता है। तो नारी पर भी सचमुच बहुत अत्याचार हुए, तभी किसी ने कहा, ठीक कहा, नर कृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले से कर बैठे नर। शास्त्र तो पुरुषों ने बनाया ना, तो अपने लिए सारी सुविधा कर ली और नारी के ऊपर तो इतना 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 बोझ डाल दिया, तो इसे दूर करना चाहिए। धर्म को जितना शुद्ध रखेंगे, धर्म में मानवीय महत्ता को जितना हम महत्व देंगे, उतना हमारे लिए गौरव की बात होगी।
शुक्रिया गुरु जी, हम सब तो यही चाहेंगे कि इस देश की हर नारी को, हर महिला को अपना हक और एक ऊंचा स्थान जरूर प्राप्त हो। यही मनोकामना करते हुए हम आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रणाम गुरु जी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है, ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार। नमस्कार, ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम कुछ राजकाज की बातें करेंगे। वो कौन सी बातें होंगी वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आप खुद ही शामिल होकर देख लीजिए।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरु जी, वैसे तो अपने अपने मंगल के लिए हम देशवासियों को मंगल धर्म का पालन करना चाहिए, तो क्या जो राज करने वाले हैं उनको भी इसी धर्म का पालन करना चाहिए?
अवश्य करना चाहिए बेटी। वो कोई साधु नहीं, सन्यासी नहीं, भिक्षु नहीं, वो भी तो गृहस्थ हैं। राज करने वाले भी गृहस्थ हैं, तो उनको तो और कड़ाई से पालन करना चाहिए। उनको देख करके लोग भी अच्छी तरह से पालन करेंगे। यथा राजा तथा प्रजा। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर राजा धार्मिक नहीं होता है तो प्रजा में अधर्म फैलता है। राजा को विशेष रूप से राज धर्म का भी पालन करना है। प्रजा मंगल धर्मों का पालन करे, राज करने वाले मंगल धर्म का पालन करे, साथ साथ राज कर रहे हैं तो राज धर्म का पालन करें। उनको इस क्षेत्र में धार्मिक होना है, फितो भवतु लोको से राजा भवतु धम्मिको। राजा जब धार्मिक होता है तो बहुत समृद्धि फैलती है, प्रजा में बहुत समृद्धि फैलती है। तो समृद्धि फैलने के लिए, सुख फैलने के लिए राजा को धार्मिक होना आवश्यक है, धर्म का पालन करना आवश्यक है। धर्म का माने ये धर्म वो धर्म नहीं, सामान्य धर्म, राज धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। क्या राज धर्म होता है? राजा रखत धम्मेन अत्तनोव पजंग पजंग। राजा अपनी प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करता है जैसे वो अपनी संतान की रक्षा करता है। उसके लिए प्रजा उसकी संतान है, उसकी रक्षा करता है। रक्षा केवल बाहर के आक्रमणों से ही नहीं, भीतर के भी चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, आतंकवादियों से, आतताइयों से, इनसे भी रक्षा करनी है। और यही नहीं बेटी, राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करे भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, ताकि देश में कोई आदमी दुखी न रह जाए। तो ये राज धर्म है, इसका पालन करना राज करने वालों के लिए बहुत आवश्यक है।
जी गुरु जी। गुरुजी, लोगों की नजर हमेशा अपने नेताओं पर होती है। पुरातन भारत की कोई ऐसी एक कहानी सुनाएंगे जिससे ये बात स्पष्ट हो।
बेटे, भारत का अतीत बहुत गौरवमय था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पुराने राजाओं ने अपने राजधर्म का किस तरह पालन किया। एक घटना, भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म की एक घटना लोगों को सुनाई। एक बड़ा पराक्रमी राजा था उस समय भारत का, बहुत धन था उसके पास, राज्य कोष खूब भरा पूरा। उसने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ ताकि और मेरा नाम हो, प्रसिद्धि हो। पुरोहित बड़ा समझदार था, खुशामदी नहीं, उसने कहा नहीं, तू यज्ञ करने लायक नहीं। मैं यज्ञ करने लायक नहीं? क्यों? तुम्हारे राज में जैसा अच्छा राज होना चाहिए वैसा राज नहीं है। गांव में चोरियां होती हैं, लुटेरे लूटते हैं, शहरों में भी लुटेरे लूटते हैं, राजपथ पर लोग लूटे जाते हैं, लोगों की सुरक्षा नहीं है, इतनी बेकारी फैली हुई है, तो लोग लूटने का काम करेंगे, चोरी का काम करेंगे? तो ये राज्य व्यवस्था तुम्हारी इस लायक नहीं है कि हम उसको आदर्श राज्य कहें और उसके लिए यज्ञ करें। मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करने को तैयार नहीं। उसे ना कर दिया। तो राजा कहता, बताइए क्या करूं मैं? जितने ये चोर डाकू लुटेरे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और किसी किसी को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा इससे, उनको सजा दोगे, निकाल दोगे, तो भी देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और तैयार होंगे इसी तरह के लोग, अंत नहीं आएगा। तो क्या करूं? देख, जो लोग खेती करने वाले हैं उनको खेती करने के लिए बीज दे, उनको आवश्यक धन दे। जो व्यापार की रुचि रखते हैं, व्यापार की योग्यता रखते हैं, उनको व्यापार करने के लिए पूंजी दे। जो नौकरी चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा, राज्य में लगा, कई सारे इतने तुम्हारे जो विभाग हैं कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा। लोग भुखमरी से बच जाएंगे, बेकारी नहीं रहेगी, तो काहे खोटा काम करेंगे? राजा की बात समझ में आई, उसने ऐसे ही किया, देश से गरीबी दूर हुई, बेकारी दूर हुई। तब उसने यज्ञ कराया। राजा अपना धर्म पालन करता है तो प्रजा बड़ी सुख से सोती है। तो राजा को धार्मिक होना बहुत जरूरी है, राज धर्म का पालन करना बहुत जरूरी।
जी गुरुजी, गुरुजी इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के फॉलोअर बन गए थे और उन्होंने अपनी पूरी सेना को भगवा वस्त्र पहनाकर भिक्षु बना दिया था, उनकी तलवारें तोड़ दी थी?
बेटी, झूठ नहीं, सफेद झूठ है। बुद्धत्व प्राप्त करने के एक वर्ष बाद ही ऐसी घटना घटी कि उसके शिष्यों ने, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने बिंबसार, राजा बिंबसार के कुछ सैनिकों को भिक्षु बना लिया। बिंबसार ने बुद्ध को खबर की कि हमारे कुछ सैनिक आपके लोगों ने भिक्षु बना लिए हैं। बुद्ध को मालूम हुआ, उसने डांट लगाई, आज के बाद कोई भी व्यक्ति, हमारे यहाँ का कोई भी संघ का व्यक्ति किसी सैनिक को, सेनाधिकारी को भिक्षु बनाएगा तो उससे बड़ा कोई दुष्कर्म नहीं होता। तुम किसी सैनिक को भिक्षु नहीं बना सकते। ये उनके बुद्धत्व प्राप्त होने के दूसरे वर्ष की बात है। देश की रक्षा के लिए बुद्ध के उपदेश भरे पड़े हैं। पराधीनता बहुत बुरी है, स्वाधीन होना चाहिए, ये उनकी शिक्षा। जहां जहां पर भी इस तरह के प्रश्न उठे, उन्होंने स्वाधीनता का पक्ष लिया। तो ये स्वाधीनता का पक्ष लेने वाले बुद्ध का शिष्य और अपने देश पर कोई हमला करे, हमने तो सबको साधु बना दिया और सबके हाथ में माला दे दी, तलवार तोड़ दी। अरे उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम किसी अन्य देश पर हमला नहीं करेंगे। कलिंग पर हमला करके देख लिया कितने लोग मारे गए। तो अपनी राज्य लिप्सा पूरी करने के लिए, मैं बड़ा सम्राट हो जाऊं, ये करने के लिए पड़ोसी देश के लोगों को मारे, अत्याचार करे उन पर, गलत बात है। तो हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये निर्णय था। लेकिन सरहद पर अपनी फौजें पहले से कुछ ज्यादा लगा दी। दुश्मन ये ना समझ ले कि अभी आक्रमण नहीं करेगा तो ठीक है, इसको लूट लो, आसान बात है। अगर सचमुच उसने सेना बर्खास्त कर दी होती, सबको भिक्षु बना दिया होता, तो पड़ोसी लोग तो कब की हमला कर जाते। किसी ने हमला नहीं किया। ये घटना, कलिंग वाली घटना घटने के बाद 29 वर्ष तक अशोक ने राज किया, थोड़ा समय नहीं होता। और अगर उसके पास सेना नहीं रहती, सब भिक्षु हो गए होते, तो पड़ोसी तो कब के लूट लेते हमारे देश को। एक हमला नहीं हुआ, इतना बड़ा विशाल राज्य उसका, और उसको उसने संभाल के रखा, उसकी सुरक्षा रखी। तो ये गलत बातें जो फैली, उससे हमने अपनी हालत शर्मनाक बना ली। निकलेंगे, उसके बाहर निकलेंगे, सच्चाई समझ में आएगी, तो हम गौरव प्राप्त करेंगे इस बात से कि हमारे देश में ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने दूसरों पर तो हमला नहीं किया, पर अपने आप को बचाया, अपने देश को बचाया।
जी गुरुजी, गुरुजी ये तो बात हुई राजा की, लेकिन क्या तब भारत में गणराज्य भी थे?
हाँ हाँ थे ना। जैसे भगवान के जन्म स्थान शाक्यों का गणराज्य था उनका भी, ऐसे और भी गणराज्य थे। वैशाली में लिच्छवियों का गणराज्य था, छोटा स्थान था, और बगल में मगध का बहुत बड़ा राज्य और बहुत बड़ी शक्ति उसकी। तो उनको भय रहता था कि कहीं यह मगध नरेश हम पर हमला करके हमको पराधीन न बना ले, जैसे शाक्यों को पराधीन बना लिया कौशल राजा ने, ऐसे ये हमको न बना ले। तो भगवान बुद्ध से मिलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए, गणराज्य की सुरक्षा के लिए सप्त सूत्री उपदेश दिया, माने 7 सूत्रों का उपदेश दिया। वो ऐसा उपदेश है कि केवल उस समय के गणराज्य की सुरक्षा के लिए ही प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। आज भी जितने गणराज्य हैं दुनिया में और भविष्य में जितने भी गणराज्य होंगे दुनिया में, उन सब की सुरक्षा के लिए एक उनका घोषणा पत्र है, उसका पालन करेंगे, किसी गणराज्य को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो रक्षा की बात की, बहुत बड़ी रक्षा की बात की।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी हम आपसे गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। आइए दर्शकों, हम कुछ और जाने गुरुजी से हमारे ऐतिहासिक भारत के बारे में। गुरुजी, जैसे कि देश के भीतर की सुरक्षा का विषय है जो आज भी महत्वपूर्ण है, तो उस वक्त भी रहा होगा, तो उस वक्त राजाओं ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए थे?
बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जो भी राज करेगा वो अपनी प्रजा की रक्षा, बाहर के आक्रमणकारियों से भी अपनी रक्षा करेगा, और भीतर भी जो राज्य व्यवस्था को तोड़ने वाले, शांति भंग करने वाले जो लोग हैं उनसे भी रक्षा करेगा। प्रसेनजीत उनका शिष्य है, कौशल का राजा, और उसकी सीमा पर दुश्मन हमला करते हैं, वो अपनी सेना लेके जाता है। जाने के पहले बुद्ध के विहार में जाके उसको नमस्कार करता है, कहता है कि हमारे यहाँ हमला हुआ है, मैं अपनी सेना को लेके जा रहा हूँ। सेना लेके जाता है, युद्ध करता है, दुश्मन को हराता है, और फिर विजय प्राप्त करके लौटता है। लौटते हुए फिर बुद्ध को नमस्कार करता है कि मैं जीत कर आया हूँ और मैंने दुश्मनों को भगा दिया। अगर बुद्ध कहता है कि सेना बंद कर दो, कह रखो, कोई हमला करे तो करो, तो वो किस मुंह से जाएगा उसके पास? तो ये निकम्मी बातें, फजूल बातें हैं। बिंबसार के सीमा पर हमला हुआ, मगध की सीमा पर, वो अपने पुत्र को भेजता है, सेना तो है वहां पर, हमला बड़ा था तो और सेना लेकर के उसके पुत्र को भेजता है, अभय राजकुमार को। उस समय भगवान बुद्ध वहीं है, मगध में है, वो जीत कर आता है, खुशियां मनती है, भगवान बुद्ध वहीं है। तो ये किस तरह की बातें अपने देश में फैली, बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई। और अंदरूनी सिक्योरिटी की यह हालत, एक केवल एक घटना, एक अंगुलीमाल जैसा डाकू, खूनी, उसने यह प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 आदमी की हत्या करूंगा। किसी बात को लेकर यह प्रण कर लिया, 1000 आदमियों को, 999 आदमियों को मार दिया, और 1000वें की प्रतीक्षा में कोई इस रास्ते आए तो उसको भी मार दूं। राजा की बड़ी बदनामी है, वो अपनी सेना भेजता है, 10 आदमी, 20 आदमी, सबको मार देता है। तो 500 आदमी की सेना लेकर के उस एक आदमी से, उस आतंकवादी से लड़ने के लिए ये जाता है, और जाते हुए फिर भगवान को नमस्कार करने के लिए रुकता है कि मुझको उस डाकू को खत्म करना है। तो अगर बुद्ध ये कहते कि नहीं सेना नहीं होनी चाहिए, कोई आक्रमण बाहर का करे तो करे, भीतर का करे तो करे, राजा को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, कितने उल्टी बात। बुद्ध कहता राजा का धर्म है रक्षा करने, बाहर से भी भीतर से भी, प्रजा को अपने संतान की तरह पालन करो। तो बेटी बुद्ध की शिक्षा में कहीं इस तरह की गलत बातों का नामो निशान नहीं है, फैल गई बातें, अपने आप सुधरेंगी, लोग समझेंगे।
गुरुजी हम इस बात को और डिटेल में जानना चाहेंगे, क्या आप हमें ये बताएंगे कि सम्राट अशोक ने आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए क्या क्या किया?
बेटी आंतरिक शांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बड़ा राज्य हो बड़ा साम्राज्य हो तो उसमें अनेक संप्रदाय होते हैं, छोटे बड़े, और वो संप्रदाय आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, हम आज देख रहे हैं ना ऐसा होता है, तो देश में शांति कहाँ से आएगी, अशांति होगी, खून खराबा होगा। ये राज धर्म को जानता है। भगवान बुद्ध ने जैसे धर्म सिखाया, बौद्ध धर्म नहीं सिखाया, धर्म सिखाया, और धर्म तो सबका होता है, हर संप्रदाय का धर्म तो एक ही है, तो बहुत ख्याल रखता है इस बात का कि मेरे देश में मेरे राष्ट्र में मेरे राज्य में तरह तरह के संप्रदाय हैं, ये आपस में लड़े नहीं। तो शिलालेख में कहता है कोई संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करे, क्योंकि जहां निंदा करे वहां झगड़ा होगा, हर संप्रदाय में जो अच्छी बातें हैं उनको उजागर करे तो प्यार होगा मोहब्बत होगी। कलिंग के बाद भी 29 वर्ष तक राज किया, बाहर का एक हमला नहीं हुआ, तो मजबूत था ना। ऐसे ही 29 वर्ष में देश में एक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, कितने प्यार से लोग रहे, क्योंकि सबको एक ही बात सिखाता है कि भाई आपस में भाईचारा करो, आपस में लड़ोगे तो दोनों खोओगे, दोनों अपनी शांति नष्ट करोगे। राजा है उसके लिए मेरी संतान है, दोनों मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है, इस प्यार के साथ उसने बांध के रखा। और अंदर भी अगर कहीं कोई आदमी गड़बड़ करता है, कोई शांति भंग करता है तो दंड भी देता है। कहता है शिलालेख में अगर मेरी प्रजा पर कोई लूटने का काम करेगा तो देखो मेरे हाथ में तलवार है, अपनी जान खो देगा। जो आदमी इतना सजग है, आदर्श राजा हुआ, इसलिए हमारा देश स्वतंत्र होने पर हमने अपने देश की ध्वजा में चक्र लगाया अशोक का, हमने अपने राज्य चिन्ह उसके वो चौमुखी जो शेर हैं उनको राज्य चिन्ह बनाया, क्योंकि आदर्श था, ये गौरव की बात है। इसको जब देखते हैं पड़ोस के देश के लोग बड़े खुश होते हैं, देखो भारत के लोगों ने सम्मान दिया अशोक को। तो इस तरह की जो गलत बातें फैली है उसको दूर करना है, जो सही बात है वो प्रकाश में आनी चाहिए।
शुक्रिया गुरुजी, आज हमने सम्राट अशोक के अनेक पहलुओं को जाना, आपने तो उनकी एक नई पहचान बता दी हमें। आपने ये भी कहा कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर हम उसे सही ढंग से सीखना चाहे तो। गुरुजी अब वक्त होता है दर्शकों के प्रश्नों का, तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर ऊर्जा में। गुरुजी पहला प्रश्न पूछ रहे हैं भारत हितेशी जी मुंबई से। वो पूछते हैं कि मैं इंडियन फिलोसॉफी का स्टूडेंट हूँ, मुझे जीवन में अब कोई आसक्ति नहीं है। जब मेरी बेटी को बेटा पैदा हुआ तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादीशुदा लड़के लड़की को तो बच्चा पैदा होता ही है। ये सुनकर मेरी पत्नी ने कहा कि फिलोसॉफी के अभ्यास ने मुझे पत्थर दिल बना दिया है। गुरुजी कृपया आप मुझे बताएंगे कि क्या मेरा ऐसा रिएक्शन गलत था?
भाई गलत ही नहीं, बहुत गलत था। तुम कैसी फिलोसफी की बात करते हो? अनासक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम भीतर का प्यार खो बैठे, मैत्री खो बैठे, करुणा खो बैठे, मुदिता खो बैठे, ये कैसी अनासक्ति हुई? तुम तो गृहस्थ हो, तो तुम्हारी तो और बड़ी जिम्मेदारी है। एक भिक्षु को एक सन्यासी को भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो किसी को चोट लगे। तुम्हारी बात से तुम्हारी पत्नी को चोट लगी, हमारी समझ में आती है क्यों चोट लगी, और यही बात जब तुम्हारी बेटी सुनेगी तो उसको और अधिक चोट लगेगी। तो ये कैसा तुम्हारी अनासक्ति हुई? सचमुच जो व्यक्ति अनासक्त होगा उसका चित्त निर्मल होगा, और निर्मल चित्त में प्यार भरेगा, मैत्री भरेगी, करुणा बढ़ेगी, औरों को मोद में देख करके मन में मुदिता जागेगी। तुम आसक्त नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम रूखे हो। व्यवहार में तुम्हारे सारे व्यवहार में स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। फिलॉसफी ठीक से समझे नहीं तुम, क्या फिलॉसफी है ये?
जी गुरु जी, उम्मीद करती हूँ कि हितेशी जी को आपकी बात जरूर समझ में आई होगी। गुरु जी, अगला हमें ईमेल आया है करनाली हिमानी जी का जयपुर से। वो पूछती हैं कि दहेज विरोधी कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बना है, पर कुछ महिलाएं उसी का उपयोग करके ससुराल वालों को परेशान करती हैं, तो इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?
इस कानून के तहत क्या कार्रवाई करोगे, ये तो किसी वकील से पूछना चाहिए, वो बताएगा। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि जहां कोई महिला इस तरह का काम करती है जो कि गलत है, तो उसके पीछे और भी तो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ये बहू किसी और बात को लेकर बहुत दुखी हो और उस बात को इस रूप में सामने रखती हो। तो घर में स्वयं देखना चाहिए कि घर में जो बहू आई है बेटी की तरह आई है, तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे वो प्रसन्न रहे, उसके मन में किसी तरह की पीड़ा ना हो, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा।
जी गुरु जी, शुक्रिया। गुरु जी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं प्रदीप सुतरिया जी अहमदाबाद से। वो पूछते हैं कि यह अहमदाबाद में एक प्रसिद्ध जैन साधु वर्षावास कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि धर्म में बुद्धि और तर्क का स्थान नहीं होना चाहिए, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। गुरु जी, कृपा करके इस बात पर आप प्रकाश डालिए।
बेटी, मुनि महाराज ने जो कहा कुछ सोच समझ के कहा होगा वो जाने, लेकिन जहां तक धर्म का सवाल है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है, धर्म की बुनियाद है। श्रद्धा ही नहीं होगी तो धर्म के रास्ते चलेगा कैसे आदमी? लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है कि किसी बात को श्रद्धा कह करके अंधश्रद्धा में न बदल दें। जो बात भी धर्म के नाम पर हमारे पास आती है, उसको बुद्धि के तराजू पर तोल के देखेंगे, तर्क की कसौटी पर कस के देखेंगे, तब स्वीकार करेंगे। तो धर्म में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मजहब में अकल को दखल नहीं, इस तरह की बात होगी तो अंधभक्ति फैलेगी, अंधश्रद्धा फैलेगी, धर्म नष्ट होगा। मुनि महाराज ने क्या बात कही, क्यों कही, इसका उत्तर वो दें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके साथ बुद्धि का प्रयोग होना आवश्यक है, श्रद्धा और ज्ञान दोनों साथ साथ चलने चाहिए।
जी गुरु जी, शुक्रिया। गुरु जी, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम।
खूब सुखी हो बेटी, खूब सुखी हो।
प्रणाम माता जी। दर्शकों, आप हमें इसी तरह अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय जरूर देखिए ऊर्जा। नमस्कार। नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता हो, तो पूरी संभावना है कि उस काल में हुई गलतियों को वो दोहराए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उसे उन घटनाओं की सही जानकारी दी जाए, ताकि वो गलत मान्यताओं के आधार पर किसी के साथ अन्याय न कर सके। आइए इसी विषय पर कुछ और जानकारी पाते हैं हमारे गुरु जी श्री गोयनका जी से।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम। गुरु जी, पिछली बार आपने हमें सम्राट अशोक एवं कम्युनल हार्मनी के बारे में बताया। ये बात आज भी बहुत रेलेवेंट है, क्या इसी बात को थोड़े और विस्तार से समझाएंगे?
हाँ बेटी, रेलेवेंट तो है। आज ही क्या, भारत जैसे महान देश में जो संप्रदाय बहुल देश है और सदा रहेगा, उसके लिए तो ये एक आदर्श बात है कि कैसे कम्युनल हार्मनी बनाए रखे। ये राजा का काम है, शासक का काम है। अक्सर राज करने वाला व्यक्ति किसी एक संप्रदाय का पक्षधर हो जाता है, उसका पक्षपात करता है, तो दूसरे संप्रदाय वालों पर एक भय पैदा होता है कि राजा उसका पक्षधर है, हम कैसे रहेंगे, तो इकट्ठे होकर के हम कहीं दूर रहने लगे, एक साथ तो रहे कम से कम। ये आदर्श राजा है, ऐसा ना हो कहीं। हर संप्रदाय के लोग जहां जहां रहते हैं वहीं रहें, अपना स्थान छोड़ के नहीं जाएं। तो शिलालेख में लिखता है सब संप्रदाय के लोग सब स्थानों पर रहें, माने उनके मन में आतंक नहीं हो, भय ना हो। तो ये आदर्श राजा की बात हुई। अक्सर होता ये है कि जब एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वाले की निंदा करते हैं, उसमें खोट देखते हैं, ऐसे हो तुम, ऐसे हो तुम, ऐसे हो, तो आपस में वैमनस्य बढ़ता है, दौर्मनस्य बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, दुर्भावना बढ़ती है। तो कहता है इससे बचो। अक्सर पागलपन में अपने संप्रदाय की तो इतनी प्रशंसा, बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा, और दूसरे संप्रदाय की निंदा ही निंदा, तो झगड़े होते हैं। तो कहता है कि किसी दूसरे संप्रदाय की भूल कर भी निंदा मत करो, निंदा करोगे तो समझो तुम अपने संप्रदाय की हानि कर रहे हो। तो ये एक कम्युनल हार्मनी कैसे बनी रहे, एक दूसरे के प्रशंसक हों, एक दूसरे के निंदक न हो।
गुरुजी, क्या सम्राट अशोक ने राज व्यवस्था के लिए और प्रशासन के लिए कोई खास सिस्टम बनाया था?
बहुत आदर्श सिस्टम बेटे। जुडिशरी को कहता है कि तुम कोई भी जजमेंट देते हुए मन में कहीं राग या द्वेष, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, तो कहीं पक्षपात हो जाएगा, या तुम बहुत किसी भाववेश में हो, सेंटिमेंट में हो, तो नहीं होगा काम तुम्हारा, ठीक नहीं होगा डिसीजन। जल्दबाजी में हो, डिसीजन ठीक नहीं होगा। आलस में हो, डिसीजन ठीक नहीं होगा। बहुत सतर्क रह के, सजग रह करके, और जो न्याय करो वो ऐसा करो कि जिससे सब प्रसन्न हो। मैंने तुम्हें जस्टिस इसलिए बनाया है कि तुम जनता का प्रेम जीतो। जनता का प्रेम कब जीतेगा? जबकि न्याय ठीक से करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। और न्याय करते हुए कहता है अतियों में मत जाओ, मध्यम मार्ग, जिस व्यक्ति ने जितना अपराध किया उसी अनुपात से उसको दंड मिले, बढ़ा चढ़ा के नहीं, इतना कम भी ना हो कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़े, फिर वो वैसे बदमाशियां फिर करता, फिर दंड मिलना चाहिए। किसी पर अति ना हो, अपराध किया है तो मृत्यु दंड भी दिया गया। क्यों, ऐसा अपराध है मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन ये ना हो कि अपराध से अधिक दंड हो, अपराध के अनुपात से दंड हो। तो बहुत समझदारी के साथ, और जो एग्जीक्यूटिव है उसके लिए रज्जुक शब्द का इस्तेमाल किया, माने जिसके हाथ में राज्य के शासन की रज्जु है, बागडोर है। तो जनता से कहता है शिलालेख में कि मैंने रज्जु इसलिए बनाए हैं कि मेरी प्रजा, जो मेरी संतान है, उसकी वो देखभाल करे। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को किसी नर्स को देते हैं, दाई को देते हैं कि वो उसकी देखभाल करे, उसके सेहत का ख्याल रखे, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखे, इसी तरह से मेरी प्रजा इसके हवाले करता हूँ। और लोग पढ़ते हैं उसे, वो भी पढ़ता है, कहीं गलती ना हो जाए। तो इतना आदर्श, एक पर एक एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। लेकिन इतने में समझना चाहिए कि दोनों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इतने आदर्श रूप से उसने स्थापित की और चलाई कि वो विश्व के लिए एक नमूना हो गया।
शुक्रिया गुरुजी, सम्राट अशोक के इस आदर्श सिस्टम के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। उनके व्यूज के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। गुरुजी, सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए?
बेटी, अगर राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है तो वो राजा होने के लायक नहीं। ये धर्मराज है तो प्रजा की रक्षा करना उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो सारे देश में आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जगह जगह उसके सैनिक होंगे, सिपाही होंगे, कोई उपद्रव ना हो जाए, और बचाना है देश को तो बाहर से भी कोई हमला ना हो जाए तो अपनी सेना बढ़ाता है, सारी सीमा पर पहले से कहीं अधिक अपनी सेना रखता है। एक ओर यह निर्णय करता है कि भाई गलतियां हुई सो हुई, कलिंग में इतनी बड़ी गलती की मैंने कि अपने राज्य लिप्सा के मारे मेरा साम्राज्य बढ़े, मेरा राज्य बढ़े, इस पागलपन में कितनों की हत्या, कितने बेघर हुए, कितनी माताएं अपने बच्चों को खोई, कितना बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा दुख है मुझे उसका, तो ऐसा काम भविष्य में नहीं करूंगा। तो धर्मराज है, कभी दूसरे देश पर हमला करके उसे हत्याने का काम नहीं करेगा। लेकिन कोई दूसरे देश वाले हम पर हमला करेंगे और कहेगा हम तो धर्मराज है करो हमला, तो धर्मराज क्या हुआ, निकम्मा आदमी हुआ। रक्षा करनी है तो भगवान बुद्ध ने रक्षा की बातें बताई, जैसे गणराज्य था, लिच्छवियों का गणराज्य था, उनको ये प्रॉब्लम था कि हम पर कोई हमला करेगा तो क्या करें, तो उनको समझाया, उनको जो 7 उपदेश दिए उनमें पहले उपदेश कितने महत्वपूर्ण है समझना चाहिए। जरा सी सूचना मिली कि हमला होने वाला है या हो रहा है तो जितने भी सांसद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तुरंत इकट्ठे हो जाए, कोई खाता है तो आधा खाकर आए, कपड़े पूरी तरह नए पहनता है आए, समय नहीं बर्बाद करे, देश पर खतरा है, और आकर के आपसे 50 मतभेद हो, इस वक्त देश पर हमला है तो सब एकजुट हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे देश की रक्षा के लिए, आपसे झगड़े को भुला करके सब एक मत होकर देश रक्षा करेंगे। ये गणतंत्र की बात हुई। जब राजतंत्र अकेला राज करता है तो उसको खुद निर्णय करना है, तो सारी सीमाओं पर किस तरह से किले बने, किलेबंदी कैसी हो, एक ऐसा आदर्श खड़ा किया। तो ये उनकी शिक्षा का अनुयायी है। ठीक इसी प्रकार तो सारी सीमा पर जब इतनी सेना खड़ी कर दी तो पड़ोसी घबराती हैं, अरे ये ऊपर से तो कहता मैं हमला नहीं करूंगा, मुझे अब किसी देश को जीतने के लिए अत्याचार नहीं करना है, तो इतनी बड़ी सेना क्यों है, अरे राजा है ऊपर से कुछ कहेगा और जब अपनी पॉलिसी बदलनी हुई हम पर हमला कर देगा, तो डरते हैं बेचारे। तो शिलालेख में लिखता है अपने फ्रंटियर के जो मंत्री हैं, महामंत्री, उनको कहता है अरे भाई पड़ोसियों को समझाओ, उनको विश्वास दिलाओ कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है उस पर मैं कायम रहूंगा, मैं उन पर हमला नहीं करने वाला, वो बिल्कुल मुझसे जरा भी डरे नहीं, आश्वस्त रहें। राजा अपने देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जितने पड़ोसी हैं वो हमारे मित्र हों, तो मित्र हों तो एक तो ये कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, एक बात, इतनी एक ही बात नहीं, फिर दूसरी बात एक और की, उस समय विश्व में सबसे समृद्ध देश था भारत, सबसे बलवान देश था भारत, तो इतना समृद्ध है और अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर हम मदद नहीं करेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उनकी सेवा में जैसे अपनी प्रजा की सेवा में रोड बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, हॉस्पिटल्स मनुष्यों की नहीं पशुओं तक की बनाई, और जगह जगह रोड पर धर्मशालाएं बनाई, यात्रा कर रहे हैं लोग कहीं पर उनको विश्राम को जगह चाहिए, पेड़ लगाए छायादार फलदार, अपने देश में लगाए सो तो लगाए, पड़ोसियों क्या लगाए कि तुम्हारे यहां भी ये सुविधा होनी चाहिए। चारों ओर आसपास के सारे देशों पर कितना बड़ा प्रभाव। तो ये जो अब मैं और देशों को धर्म से जीतूंगा, तो ये धर्म से जीतना हुआ, ऐसी जीत जिसमें कोई हारा नहीं, जीत तो हुई पर वो हारे थोड़ी, वो भी जीते ये भी जीते, दोनों खुश और दोनों का कल्याण, और ऐसी जीत की पड़ोस के लोगों पर उनके हृदय पर अपना आधिपत्य जमा लिया, हृदय सम्राट हो गया। कोई विश्व भर में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जिसका प्रभुत्व हजारों वर्षों के बाद भी कायम है, आज भी पड़ोसी देश के लोग अशोक को एक आदर्श राजा मानते हैं, क्योंकि उसने प्यार दिया, उसने कोई आधिपत्य करके उनका शोषण नहीं किया। तो धर्म से जीतेंगे तो आधिपत्य करके शोषण नहीं करेंगे, उनका सेवा करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात धर्म भेजा उनको, तो वो जो भेजा उससे उनका कल्याण हुआ, तो हर तरह से प्यार बढ़ाया, पड़ोसियों के साथ इतना प्यार इतना स्नेह, जीत गया ना। आज तक जीत है हमारी, वो अशोक की जीत नहीं है, भारत की जीत थी। आज भी भारत की भूमि को नमस्कार करने के लाखों लोग आते हैं वहां से, और 2500 वर्षों में लाखों आए हैं और आगे लाखों आते रहेंगे। सम्मान है भारत का। ये सारा आदर्श देख करके सचमुच मन में बड़ा रोमांच होता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे राजा हुए, धर्म राजा हुए।
जी गुरुजी, गुरुजी सम्राट अशोक की एक और उपलब्धि थी जो उनकी यूनिकनेस थी, इसके बारे में आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। हम जानकारी पा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। गुरुजी, सम्राट अशोक जी ने पड़ोसी देशों में अपने धर्मदूत भेजे थे, क्या उसी संबंध में आप हमें कुछ बताएंगे?
हाँ बेटी, जिसको धर्म विजय कहा गया, तो क्या धर्म विजय है कि लोगों को ऐसा धर्म का संदेश भेजा जो सार्वजनिक है, उसमें कहीं भारत उन पर प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं, धर्म दूत गए। जैसे राजा लोग राजदूत भेजते हैं, अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं, इसने धर्म के एम्बेसडर्स भेजे, धर्म दूत भेजे, ताकि वहां जाकर के लोगों को किस तरह जीना चाहिए, कैसे सुख शांति का जीवन जिए, ये धर्म जो सार्वजनिक है, वो कोई किसी एक संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है, वो धर्म सिखाने के लिए। तो भगवान बुद्ध की वाणी जो शिक्षा वो लेकर गए, विपश्यना विद्या वो लेकर गए, तो आज तक लोग उसका लाभ ले रहे हैं, और इसलिए अशोक का गुण गाते हैं, अरे राजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो। मैं पड़ोसी देश में रहा हूं तो जानता हूं, वहां के गृहस्थ सुबह सुबह वंदना इत्यादि करके मंगल कामना करते हैं, तो क्या मंगल कामना करते हैं? देवो वस्सतु काले ने, बादल समय पर बरसे, सस्स संपत्ति है तुझे, खूब पैदावार हो इस मारे इसलिए समय पर बरसे, फीतो भवतु लोको जय, लोगों में खूब समृद्धि हो। ये कैसे होगा, क्यों होगा? तब होगा जबकि राजा भवतु धम्मिको, राजा धार्मिक होगा तो ये सारी बातें होगी। हमारे देश का राजा भी धार्मिक हो, ये मंगल कामना करते हैं, हमारे देश की समृद्धि हो, हमारे देश का राजा धार्मिक हो। और फिर पाठ करते हैं, यथा रखिन सुपुराणो सुराजानो तथे विमंग, जैसे पुराने राजा ने अपनी प्रजा का सुरक्षित रखा, अपने प्रजा को कैसे सुरक्षित रखा, वैसे ही हमारा राजा भी सुरक्षित रखे। राजा रख तो धम्मेन अत्तनोव पजंग पजंग, अपनी संतान की तरह, प्रजा को अपनी संतान की तरह मान करके उनकी रक्षा करे। तो अशोक है उनके ध्यान में, कितना सम्मान है अशोक के प्रति, सम्मान भारत के प्रति है, भारत का प्रतिनिधि है अशोक, उसने कोई अपनी छाप नहीं डाली। ये भारत की महानता है कि जहां इस तरह का शासन आदर्श शासन माना जाता है वो करके दिखाया। सारे विश्व के साथ हमारा बंधुत्व है, विश्व बंधुत्व कोई बातें नहीं है, करके दिखाया इस तरह का विश्व बंधुत्व है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, ये करके दिखाया कुटुंब है। तो एक आदर्श खड़ा किया भारत का, ये जीना सीखे, कैसे सुख शांति से जी सके, कैसे समृद्धि से जीके, इसलिए धर्मदूत भेजे। बड़ा मंगल हुआ, भारत का मंगल हुआ, विश्व का मंगल हुआ। और बेटी, एक उस एक धर्म राजा की वजह से भारत का कितना बड़ा गौरव, कितनी गरिमा, ये बहुत बड़ी बात हुई बेटी।
जी गुरुजी, शुक्रिया। इसी मंगल बात को हृदय में रखते हुए हम हमारे शो के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि व्यूअर्स के प्रश्नों पर आधारित है। तो दर्शकों, कहीं मत जाएगा, लौटते हैं तुरंत। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अकोला से नागेश गवई जी। वो पूछते हैं कि जिस सृष्टि निर्माता ने ये विश्व बनाया है, उसके पास तो सभी तरह के उपाय हैं, तो जिस अहंकारी वृत्ति से मनुष्य अच्छे आचरण को भूल जाता है और एक तरह से अत्याचारी हो जाता है, तो उसका वो स्वभाव जिन मूलभूत तत्वों से बना हुआ है, क्या वो उन्हें भूल नहीं सकता? ताकि विश्व में सब ओर शांति और सदाचरण का वातावरण पैदा हो।
बहुत बड़ा लांछन लगा दिया तुमने सृष्टि निर्माता पर, उस पर दोष क्यों देते हो? अगर कोई है सृष्टि निर्माता तो हम कहेंगे तुमको सुधारना चाहिए, सब लोगों को सुधारना चाहिए। अरे सुधारना खुद को, अपने आप को, हर व्यक्ति को, कोई बिगाड़ने वाला नहीं। किसी भी सृष्टि निर्माता को अगर कोई है तो ये क्या पड़ी कि लोगों को दुखी बनाए, उनमें दुर्भावना जगाए, उनमें द्वेष जगाए, क्या पड़ी उसे? हम अपने पागलपन से, अपनी नासमझी से अपने भीतर ऐसा मैल जगाते हैं द्वेष का, दुर्भावना का, खुद व्याकुल होते हैं, औरों को व्याकुल करते हैं। बदलना हमें है, वो क्या करेगा? रास्ता है बदलने का, कैसे अंतर्मुखी होकर अपने विकारों को निकालें, अपना स्वभाव बदल दें, दुर्भाव के स्वभाव को सद्भाव में बदल दें, सुखी हो जाएंगे। किसी को दोष मत दो।
जी गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही है सुरेखा जी जयपुर से। वो कहती है कि मेरी जिंदगी में कई तूफान आए हैं, मेरा एकमात्र बेटा मेरी परवाह नहीं करता, भटक गया है, मेरे पति को मार डाला गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
बेटी सचमुच तुम्हारे जीवन की बहुत दुखद घटनाएं है ये। क्यों हुआ तो ये समझना चाहिए कि हमारे किसी पुराने कर्म का फल आया है। अगर इस परिस्थिति में मैं अपने मन को व्याकुल करती हूं तो जो व्याकुलता का बीज बो रही हूं, जितने क्षण मैं अपने आप को व्याकुल करती हुई व्याकुलता का बीज बो रही हूं, प्रकृति का अटूट नियम है, व्याकुलता का बीज व्याकुलता का फल लेकर के आएगा, कई गुना बढ़कर के आएगा। तो जो कोई कर्म की वजह से तुम्हारे सामने अप्रिय स्थिति आई, अब तुम उसको बढ़ावा दे रही हो, व्याकुल होकर के भविष्य के लिए व्याकुलता पैदा कर रही हो। समता के साथ सामना करो। आई है घटना, घटी है, व्याकुल होने से वो घटना दूर नहीं हो जाएगी। व्याकुल बिना हुए बिना चित्त की समता के साथ उसको सहन करो। चित्त में किसी के प्रति द्वेष मत जगाओ, अपनी ओर से कोई दुर्भावना मत पैदा करो, भविष्य अपने आप सुधरता चला जाएगा।
गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं मुंबई से मिस्टर मेहता और श्यामला ठक्कर जी। वो कहते हैं कि आपने अपने प्रवचन में कहा था कि पुनर्जन्म निश्चित है, तो यदि पुनर्जन्म निश्चित है तो कृपया सप्रमाण समझाने का कष्ट करें।
बेटी हम जीवन में देखते हैं एक ही मां के गर्भ से दो जुड़वा बेटे पैदा हुए, एक ही नक्षत्र में एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, बड़े हो रहे हैं, एक ही वातावरण में पल रहे हैं, उन पर कोई इन्फ्लुएंस बाहर का नहीं, उसी परिवार का है, लेकिन एक की प्रवृत्ति बिल्कुल अच्छाई की ओर, दूसरी की प्रवृत्ति बिल्कुल बुराई की ओर, ऐसा क्यों हुआ? तो समझना चाहिए कि ये धारा केवल इस जन्म से नहीं चली है, अनेक जन्मों से एक धारा चल रही है। उसमें अगर एक प्राणी ने ऐसा स्वभाव बना लिया कि जो बुराई की ओर जाने वाला स्वभाव है, तो इस जन्म में भी बुराई की ओर जाएगा, उसने स्वभाव बनाया है। और दूसरे ने ऐसा स्वभाव बनाया जो अच्छाई की ओर जाएगा, तो वो अच्छाई की ओर जाएगा। तो ये हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमारी जीवन धारा अच्छाई की ओर जा रही है, बुराई की ओर जा रही है। कोई कहे हम तो नहीं मानते पुनर्जन्म। अच्छा बाबा मत मानो, इस जन्म को तो मानते हो ना, तो तुम अपने इस जन्म को सुधारो। पुनर्जन्म होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुमने इस जन्म को सुधार लिया। भविष्य जो होगा वर्तमान की संतान होगी, तुमने अपना वर्तमान सुधार लिया, भविष्य अच्छा होगा। मान लो कि नहीं होता पुनर्जन्म तो खोया क्या रे तुमने? इस जन्म को तो सुधारा, ये जन्म तुमने सुख से बिताई, ये जन्म का तुमने जो लाभ लेना था मनुष्य जीवन का, तुमने लाभ लिया, अच्छी बात हुई ना। अब इसको मान या ना मान, इस जन्म को सुधार। हमारे लिए प्रमुख वर्तमान है, हमारे लिए प्रमुख ये क्षण है, ये जीवन।
शुक्रिया गुरुजी, आज आपने हमें कितनी अच्छी अच्छी नई बातें सुनाई, और गुरुजी हमारे व्यूअर्स भी अपने प्रश्नों के उत्तर आपसे पाकर बहुत ही खुश हैं। गुरुजी आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम।
खूब सुखी हो बेटी, खूब सुखी।
प्रणाम माता जी। दर्शकों आप इसी तरह से हमें अपने प्रश्न लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क पीओ बैग नंबर 1 अंधेरी ईस्ट मुंबई 99 इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय जरूर देखिए ऊर्जा। नमस्कार।